पेश है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलिया के जलवायु विशेषज्ञ फेडरल सरकार की मॉडलिंग से नाखुश। दिवाली के बाद से ही गिरता जा रहा है भारतीय राजधानी के प्रदूषण का स्तर। और अल्बानिया को इंग्लैंड ने फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में दी करारी शिकस्त। और अब खबरें विस्तार से। फेडरल सरकार द्वारा पेश की गई नई जलवायु मॉडलिंग सुझाती है कि ऑस्ट्रेलिया नेट जीरो एमिशंस की योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से बेहतर रहेगा। इस 130 पन्ने के दस्तावेज में कहा गया है कि हर ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति 2050 तक $2,000 का फायदा ले सकता है बनिस्बत उस परिस्थिति के जब कोई जलवायु योजना ना लागू हो। मॉरिसन सरकार की इस योजना के अनुसार कार्बन उत्सर्जन के लिए नई तकनीक में निवेश से 40% तक की लक्षित कमी आएगी। इसमें से कुछ तकनीकों को गुणवत्ता साबित न होने के आधार पर विशेषज्ञों की आलोचना भी सहनी पड़ी है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एनर्जी एंड डिजास्टर सोल्यूशन से प्रोफेसर फ्रैंक जॉत्सो का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को तकनीकी आविष्कार का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह कि इस रिपोर्ट को पढ़कर ऐसा लगता है कि सरकार बहाने बना रही है। COP26 जलवायु वार्ता अपने निर्धारित समय से आगे बढ़ा दी गई है ताकि विश्व नेता जलवायु परिवर्तन पर कोई ठोस कदम उठा सके। विभिन्न देशों ने अनुबंधों की नवीनतम प्रति पर अपने विचार पेश करने शुरू किए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यह चर्चा कल दोपहर तक जारी रह सकती है। कम आय वाले और प्रगतिशील देशों को, जो कि सबसे अधिक खतरे के निशान पर हैं, के लिए अधिक आर्थिक सहायता की मांग की गई है। गैबोनियाई पर्यावरण मंत्री ली वाइट का कहना है कि ये समझौते केवल विश्वास के आधार पर तो नहीं किए जा सकते।
We just can't accept, we can't trust the developed countries when they say, trust us, we are going to voluntarily fund your adaptation. Yeah. We agree that it's our emissions that have resulted in you having to adapt. We agree that we're a better place to adapt than you are. We're asking for dependable, predictable revenues that will allow countries to adapt, and the developed nations are saying no, it has to be purely voluntary.
मध्यस्थ भी कोयले के प्रयोग के अंत और खनिज ऊर्जा के लिए मिलने वाली छूटों को धीरे धीरे खत्म करने के प्रस्ताव से अब बचते नजर आ रहे हैं। उधर देश में विक्टोरिया ने आज 1221 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए हैं। राज्य में आज 4 मृत्यु भी दर्ज हुई हैं। राज्य में अब 12 साल से अधिक उम्र के 86% व्यक्तियों को पूर्ण टीका प्राप्त हो चुका है। उधर न्यू साउथ वेल्स में आज सामने आए मामलों में गिरावट देखी गई है। राज्य में आज 250 मामले सामने आए हैं। राज्य की 94.1% 16 साल से अधिक की जनता को टीके की प्रथम खुराक प्राप्त हो चुकी है। वहीं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में आज 11 नए मामले सामने आए हैं और उपराज्य में 96% पात्र जनता को पूर्ण टीका प्राप्त हो चुका है। नॉर्दर्न टेरिटरी के पुलिस कमांडर डैनी बेकन ने चेताया है कि टेरिटरी में होने वाले वैक्सीन नियमों के खिलाफ प्रदर्शनों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन लगाए जाएंगे। पिछले सप्ताहन डार्विन लॉकडाउन के बीच वैक्सीन नियमों पर हुए विरोधों में कम से कम 1 दर्जन लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए हैं। श्री बेकन का कहना है कि आने वाले दिनों में यह गिनती और बढ़ सकती है। आज से नॉर्दर्न टेरिटरी में काम करने वाले कामगारों को कम से कम 1 टीके की खुराक पाना अनिवार्य है। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो सीमित प्रतिरोधक शक्ति वाले लोगों के साथ आमने सामने का कार्य करते हैं या कोरोना प्रकोप होने के खतरे वाली जगहों पर कार्य करते हैं या आवश्यक सेवाओं में संलग्न हैं। टेरिटरी की करीब 5% जनता को बीते हफ्ते में उनकी टीके की पहली खुराक मिली है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमरीकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कहना है कि उन्होंने अपनी 4 दिवसीय फ्रांस की यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ ऑकस सबमरीन अनुबंध की कोई बात नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के साथ गोपनीय रूप से हुई इस डील की वजह से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले से हुए एक करार को तोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से फ्रांस और अमरीका के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से खराब हो गए थे। सुश्री हैरिस का कहना है कि उन दोनों ने इस विषय के बनिस्बत आपसी फायदे के विषयों पर, जैसे यूरोपियाई सुरक्षा, अफ्रीका, ईरानी चर्चा और बेलारूस सीमा की परिस्थितियों पर चर्चा की।
I will tell you that was not the purpose of this trip and we didn't discuss it. What we did discuss is the issues that are challenging us and the issues that are the basis for this relationship and the strength and the endurance of this relationship. On the issue of Belarus and what is happening at the border with Poland, we are very concerned about that and closely paying attention to it. And the Lukashenko regime, I believe, is engaged in very troubling activity.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर परिस्थितियां चिंताजनक होती जा रही हैं।
I think it's a great concern. We've communicated our concern to Russia. We've communicated our concern to Belarus. We think it's a problem.
बेलारूस के बॉर्डर पर हजारों रेफ्यूजी, जिनमें से अधिकांश मध्य पूर्वी इलाकों से हैं, कि यूरोपीय संघ में प्रवेश करने की कोशिशों में एकत्र होने के बाद बेलारूस और पोलैंड के बीच तनाव बढ़ गया है। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड पर सीमा पर अभूतपूर्व सैन्य बल एकत्र करने का आरोप लगाया है। वहीं यूरोपीय संघ का कहना है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको उनकी सरकार पर लगे यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के पलटवार में अब संघ में गैर कानूनी ढंग से रेफ्यूजियों को सीमा पार कराना चाहते हैं। बेलारूस ने इन आरोपों का खंडन किया है, पर साथ यह भी कहा है कि वह लोगों को यूरोपीय संघ में प्रवेश करने से नहीं रोकेगा। उधर संयुक्त राष्ट्र ने यह चेतावनी जारी की है कि पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर फंसे शरणार्थी मोहरों की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक का कहना है,
We have on our side two agencies. The UN Refugee Agency and the International Organization of Migration, who are capable of helping out and who are willing to do what they can to resolve the situation. We need to make sure that they have the access that they need to the people who are in need of assistance. But at the same time, our call on the governments is that when dealing with these people, their basic rights and their basic needs need to be respected. And again, they should not be instrumentalized.
गिरते तापमान और बढ़ते सीमा प्रतिबंधों के बीच बड़ी मानवीय आपदा की आशंका जताई जा रही है। उधर अफगानिस्तान में एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज के ऐन पहले हुए एक बम धमाके में कम से कम 12 लोगों के घायल होने की खबर आई है। यह धमाका पूर्वी अफगानिस्तान के नानघरहर इलाके के स्पिनघर जिले में हुआ है। घायलों में मस्जिद के इमाम भी शामिल हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक धमाका मस्जिद की मीनार पर तब हुआ जब इमाम अपना प्रवचन देने के लिए उठे ही थे। और अब खबरें भारत से। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिशें हो रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को गाड़ियों का इस्तेमाल 30% तक घटाने की सलाह दी है। इसके साथ ही ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक इमरजेंसी उपायों को भी लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि दिवाली के बाद से ही दिल्ली के हवा और पानी में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। आज भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार यानी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लगातार कुछ न कुछ कदम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए हैं, लेकिन अब तक ये प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं, लिहाजा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आसमान में लगातार स्मॉग की चादर बिछी हुई है। भारतीय रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के संचालन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी ट्रेनें पहले की तरह चलेंगी, यानी अब ट्रेनों को पुराने नंबर और पुराने किराए पर चलाया जाएगा। मंत्रालय ने स्पेशल नंबर के तौर पर चलने वाली ट्रेनों को अब रेगुलर ट्रेन नंबर पर चलाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद यात्रियों को रेल किराए में राहत मिलेगी। कोविड काल में शुरू हुई ट्रेनों के स्पेशल स्टेटस की वजह से यात्रियों को ज़्यादा किराया देना पड़ रहा था। हालांकि आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जोनल रेलवे को अपनी पूर्व कोविड नियमित सेवाओं पर वापस जाने की आवश्यकता है या नहीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जोनल रेलवे को निर्देश दिया गया है, हालांकि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। इस प्रक्रिया में 1 या 2 दिन लगेंगे। और अब डॉलर का हाल। आज यानी शनिवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.52 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 73 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। इंग्लैंड के फुटबॉल कप्तान हैरी केन ने हाफ टाइम के पहले हैट्रिक गोल दागकर अल्बानिया को वेम्बली में धूल चटा दी है। इसी के साथ उन्होंने अगले साल कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में लगभग इंग्लैंड की जगह तय कर दी है। श्री केन ने अपनी हैट्रिक का आखिरी गोल एन हाफ टाइम की घंटी पर दागा। इससे पहले अल्बानिया के जॉर्डन हेंडरसन ने 3-0 से अल्बानिया को बढ़त दिलाई थी, लेकिन श्री केन की हैट्रिक ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया। और अंत में एक नजर कल यानी रविवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल बारिश कम होने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 17 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। यहां अधिकतम तापमान 15 जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका है। यहां अधिकतम तापमान 14 डिग्री जबकि न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल धूप ही धूप है। यहां अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में धूप छांव का मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 36 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप बने रहने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।